बुक माय शो जूक बॉक्स प्रेजेंट्स अफसानों का सफर।
जश्न कलम पेश करता है सआदत हसन मंटो साहब का अफसाना मम्मद भाई।
फारस रोड से आप उस तरफ गली में चले जाइए जो सफेद गली कहलाती है, तो उसके आखिरी सिरे पर आपको चंद होटल मिलेंगे। यूं तो बंबई में कदम कदम पर होटल और रेस्तरां हैं, मगर जिन होटलों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और मुनफरिद हैं कि ये उस इलाके में वाके हैं जहां भांत भांत की रंडियां बसती हैं, जो सैकड़ों जंगला लगी दुकानों में बैठकर अपना जिस्म बेचती हैं मुख्तलिफ दामों पर, 8 आने से 8 रुपए तक, 8 रुपए से 100 रुपए तक। यहूदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, एंग्लो इंडियन, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, गरज ये कि हर किस्म की औरत आपको यहां से दस्तयाब हो सकती है। अब ये औरतें कैसी होती हैं, माफ कीजिएगा, इसके मुतालिक मुझसे कुछ मत पूछिएगा, बस औरतें होती हैं और इनको ग्राहक मिल ही जाते हैं। इस इलाके में बहुत से चीनी भी आबाद हैं, बाज तो रेस्तरां चलाते हैं जिनके बाहर बोर्डों पर कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में कुछ लिखा होता है, मालूम नहीं क्या। वहीं पास में एक गली है जिसका नाम अरब सीन है, वहां के लोग उसे अरब गली कहते हैं। उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहीं अरब गली में गालिबन 20-25 अरब रहते थे जो खुद को मोतियों का व्यापारी कहते थे, बाकी आबादी पंजाबियों और रामपुरियों पर मुश्तमिल थी। उसी गली में मुझे एक कमरा मिल गया था जिसमें सूरज की रोशनी का दाखिला बंद था, हर वक्त बिजली का बल्ब रोशन रहता था। उस कमरे का किराया 9 रुपए माहवार था। अच्छा, आपका कयाम अगर बंबई में नहीं रहा है तो आप मुश्किल ही से यकीन करेंगे कि वहां किसी को किसी और से कोई सरोकार नहीं होता। अगर आप अपनी खोली में मर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पड़ोस में कत्ल हो जाए, मजाल है जो आपको खबर हो जाए। मगर वहां अरब गली में एक शख्स ऐसा था जिसको अड़ोस पड़ोस के हर शख्स से दिलचस्पी थी। उसका नाम मम्मद भाई था। मम्मद भाई रामपुर का रहने वाला था, अव्वल दर्जे का फिकैत, गतके और बिन्नौट के फन में यकता। मैं जब अरब गली में रहने लगा तो होटलों में उसका नाम अक्सर सुनने में आया, लेकिन एक अरसे तक उससे मुलाकात ना हो सकी। मैं सुबह सवेरे अपनी खोली से निकल जाता था और बहुत रात गए लौटता था। अपनी मसरूफियत के बावजूद मुझे मम्मद भाई से मिलने का बहुत इश्तियाक था कि उसके मुतालिक अरब गली में बेशुमार दास्तानें मशहूर थीं।
भाईजान, 20-25 आदमी अगर लाठियों से मुसल्ले होके उस पर टूट पड़े ना, तो भी उसका बाल तक वीका नहीं कर सकते, बल्कि खुद 1 मिनट के अंदर अंदर चित हो जाते हैं। अये भाईजान की उस जैसा छुरी मार, सुभान अल्लाह, बंबई में, सारी बंबई में कोई और नहीं है। ऐसे छुरी मारता है कि जिसके लगती है उसको पता भी नहीं चलता। वो बस 100 कदम बगैर एहसास के चलता रहता है और फिर एकदम ढेर हो जाता है। ये सफाई है उसके हाथ की भाईजान।
उसके हाथ की सफाई देखने का मुझे इश्तियाक नहीं था, लेकिन उसके मुतालिक बातें सुन सुनकर मेरे दिल में ये ख्वाहिश जरूर पैदा हो चुकी थी कि उसे देखूं। उससे बातें चाहे ना करूं, लेकिन उसे करीब से देख लूं कि वो दिखाई कैसा देता है। वो बहुत बड़ा दादा था, लेकिन इसके बावजूद लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। उसने कभी किसी बहू बेटी की तरफ आज तक आंख उठाकर भी नहीं देखा है। वो लंगूट का बहुत पक्का है, गरीबों के दुख दर्द का शरीक है। सिर्फ अरब गली ही नहीं, आसपास जितनी गलियां हैं और उनमें जितनी नादार औरतें हैं सब उसको जानती हैं कि वो अक्सर उनकी माली इमदाद करता रहता है। मुझे मालूम नहीं उसकी आमदनी के क्या जराए थे। वो अच्छा खाता था और अच्छा पहनता था। उसके पास एक छोटा सा तांगा था जिसमें एक बड़ा तंदुरुस्त टट्टू जूता होता था। तांगा वो खुद चलाता था, साथ में 2 या 3 शागिर्द होते थे, बड़े बाअदब। मम्मद भाई के मुतालिक मैं अरब गली के गंदे और वाहियात होटलों में और भी बहुत कुछ सुन चुका था। एक शख्स ने जो गालिबन मम्मद भाई का शागिर्द था, उसने मुझसे कहा था,
भाईजान, मम्मद भाई अपने नेफे में हमेशा एक ऐसा आपदा खंजा उड़स के रखता है जो उस तरह की तरह शेव भी कर सकता है, और ये खंजा नियाम में नहीं होता, खुला होता है बिल्कुल नंगा, और वो भी दये पेट के साथ चिपका हुआ।
भाईजान, उस खंजर की नोक इतनी तीखी है, क्या बताऊं कि अगर बातें करते हुए या झुकते हुए जरा सी गलती हो जाए तो मम्मद भाई का एकदम काम तमाम हो जाए।
जाहिर है कि मम्मद भाई को देखने और उससे मिलने का इश्तियाक दिन ब दिन मेरे दिलो दिमाग में बढ़ता गया। मालूम नहीं मैंने अपने तसव्वुर में उसकी शक्लो सूरत का क्या नक्शा तैयार किया था। अब इतनी मुद्दत के बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि उन दिनों मैं एक कवि हैकल शख्स को अपनी आंखों के सामने देखता था जिसका नाम मम्मद भाई था और जो मुझे हरक्यूलिस साइकिलों के इश्तिहारों में नजर आता था। वैसे मैंने कई मरतबा सोचा कि काम पर ना जाऊं, सारा दिन अरब गली में गुजारूं और मम्मद भाई को देखने और मिलने की कोशिश करूं, मगर मैं ऐसा ना कर सका कि मेरी मुलाजिमत ही बड़ी वाहियात किस्म की थी। उन्हीं दिनों अचानक मलेरिया ने मुझ पर जबरदस्त हमला किया, ऐसा हमला कि मैं बौखला गया। अरब गली के एक डॉक्टर ने कहा,
भाई खतरा है कि मलेरिया बिगड़कर नमूनिया में ना तब्दील हो जाए।
हाँ, मैं बिल्कुल तने तनहा था। मेरे साथ मेरी खोली में जो एक शख्स रहता था उसको पूना में नौकरी मिल गई थी और अब उसकी रफाकत मुझे नसीब नहीं थी। मैं बुखार में फूंक रहा था, इस कदर प्यास लग रही थी कि जो पानी खोली में रखा था वो मेरे लिए नाकाफी था और दोस्त यार कोई पास था नहीं जो मेरी देखभाल करता। मैं बहुत सख्त जान हूं, देखभाल की मुझे अमूमन जरूरत महसूस नहीं हुआ करती, मगर मालूम नहीं वो किस किस्म का बुखार था, किस किस्म का मलेरिया था कि उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी और मैं बिलबिला रहा था। मेरे दिल में पहली मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कोई मेरे पास मौजूद हो और मुझे दिलासा दे। दिलासा न दे, कम अज कम अपनी शक्ल ही दिखाता रहे, मुझे ये खुशगवार एहसास तो हो कि मुझे पूछने वाला कोई है। तो जनाब, दो दिन तक मैं बिस्तर में पड़ा तकलीफ भरी करवटें लेता रहा, मगर कोई ना आया। आना किसे था, मेरी जान पहचान के लोग ही कितने थे, दो तीन या चार, और वो इतनी दूर रहते थे कि उनको मेरी मौत तक का इल्म नहीं हो सकता था। फिर बंबई में कौन किसको पूछता है, कोई मरे या जिए बला से। खैर, मैं बड़ी निढाल हालत में था और सोच ही रहा था कि जैसे तैसे खुद नीचे उतरूं और किसी से बात करूं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ख्याल किया कि होटल का छोकरा होगा जिसे बंबई की जबान में बाहर वाला कहते हैं। मैंने बड़ी मरियल आवाज में कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला और एक छरेरे बदन का आदमी जिसकी मूछें मुझे सबसे पहले दिखाई दी अंदर दाखिल हुआ। उसकी मूछें ही सब कुछ थी, मेरा मतलब यह है कि अगर उसकी मूछें ना होती तो बहुत मुमकिन है वो कुछ भी ना होता। उसकी मूछों ही ने ऐसा मालूम होता था उसके सारे वजूद को जिंदगी बख्श रखी है। वो अंदर दाखिल हुआ और अपनी कैसर विलियम जैसी मूछों को एक उंगली से ठीक करते हुए मेरी खाट के करीब आया। उसके पीछे तीन चार आदमी और थे, अजीबोगरीब वजोकत के। मैं हैरान था कि वो लोग कौन है और मेरे पास क्यों आए हैं। भाई, कैसर विलियम जैसी मूछों और उछरेरे बदन वाले आदमी ने मुझसे बड़ी नर्मो नाजुक आवाज में कहा,
मंटो साहब आपने हद कर दी, साला मुझे इत्तला क्यों ना दी।
मंटो का वमटो बन जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, फिर मैं इस मूड में भी नहीं था कि उसकी इसलाह करता। मैंने अपनी नहीफ आवाज में उसकी मूछों से सिर्फ इतना पूछा, आप लोग कौन हैं? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया,
मम्मद भाई।
जाने मुझे क्या हुआ, मैं आपसे आप उठकर बैठ गया। मम्मद भाई, आप मम्मद भाई हैं मशहूर दादा।
मेरे मुंह से निकल तो गया लेकिन फौरन मुझे अपने बैंडेपन का एहसास हुआ और मैं रुक गया।
मम्मद भाई ने छोटी उंगली से अपनी मूछों के करख्त बाल जरा ऊपर किए और मुस्कुराया,
हाँ अम्टो भाई, मैं मम्मद भाई हूँ, हाँ का मशहूर दादा। मुझे बार वाले से मालूम हुआ कि तुम बीमार हो, सलाह भी कोई बात है कि तुमने मुझे खबर ना की। अभी मम्मद भाई का मस्तक फिर जाता है जब कोई ऐसी बात होती है। हाँ,
मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपने साथियों में से एक से मुखातिब होकर कहा, अरे क्या नाम है तेरा, जा भाग के जाओ, क्या नाम उस डॉक्टर का, समझ गए ना, उससे कहे कि मोहम्मद भाई बुलाता है, एकदम जल्दी आए, एकदम सब काम छोड़ दे और जल्दी आए। और देख, साले से कहना हूँ क्या है उसका, वो सब कुछ सब दवाएं लेता है। मोहम्मद भाई ने जिसको हुक्म दिया वो एकदम चला गया। मैं चुप था, सोच रहा था, उसको देख रहा था। वो तमाम दास्तानें मेरे बुखार आलूदा दिमाग में चल फिर रही थीं जो मैं उसके मुतालिक लोगों से सुन चुका था, लेकिन गडमट सूरत में कि उसकी तरफ नजर उठते ही उसकी मूछें सब दास्तानों पर छा जाती थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस चेहरे को जिसके खद्दोखाल बड़े मुलायम और नरमो नाजुक हैं सिर्फ खौफनाक बनाने के लिए वो मूछें रखी गई हैं। मैंने अपने बुखार आलूदा दिमाग में सोचा कि मम्मद भाई दर हकीकत इतना खौफनाक नहीं जितना उसने खुद को जाहिर कर रखा है। खैर, खोली में कोई कुर्सी नहीं थी, मैंने मम्मद भाई से कहा कि वो मेरी चारपाई पर बैठ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया,
नहीं हम खड़े रहेंगे।
फिर उसने टहलते हुए, हालांकि खोली में टहलने की अय्याशी की कोई गुंजाइश नहीं थी,
अपने कुर्ते का दामन उठाकर पाजामे के नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकाला।
अरे मैं समझा खंजर चांदी का है,
इस कदर लशक रहा था कि आपसे क्या कहूं। खंजर निकालकर पहले उसने अपनी कलाई पर फेरा, जो बाल खंजर की जद में आए सब साफ हो गए। उसने इत्मीनान का सांस लिया और नाखून तराशने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मम्मद भाई की आमद ही से मेरा बुखार कई दर्जे नीचे उतर गया है।
मम्मद भाई मम्मद भाई, ये खंजर तुम इस तरह अपने नेफे में यानी बिल्कुल अपने पेट के साथ चिपका कर रखते हो और ये इस कदर तेज है, क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता?
उसने खंजर से अपने नाखून की एक काश बड़ी सफाई से उड़ाते हुए जवाब दिया।
ये खंजर दूसरों के लिए है और ये अच्छी तरह जानता है, साला अपनी चीज है, अपने को नुकसान कैसे पहुंचाएगा।
खंजर से जो रिश्ता उसने कायम किया था वो कुछ ऐसा ही था जैसे कोई माँ या बाप कहे कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, इसका हाथ मुझ पर कैसे उठ सकता है। इतने में डॉक्टर आ गया। उसका नाम पिंटो था और मैं वमटो था। उसने मम्मद भाई को अपने खास क्रिश्चियन अंदाज में सलाम किया।
हेलो मम्मद भाई, हाउ आर यू, हाउ आर यू, और पूछा कि मामला क्या है, क्या मामला?
जो मामला था वो मम्मद भाई ने बयान कर दिया, मुख्तसर लेकिन कड़े अल्फाज में जिनमें तहक्कुन था।
देखो अगर तुमने ममटो भाई का इलाज अच्छी तरह से नहीं किया तुम्हें खैर नहीं।
डॉक्टर पिंटो ने फरमा बरदार लड़के की तरह अपना काम किया। उसने मेरी नब्ज देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर मेरे सीने और पीठ का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर देखा, मुझसे मेरी बीमारी की तमाम तफसील पूछी। फिर उसने मुझसे नहीं मम्मद भाई से कहा,
फिक्र की कोई बात नहीं, मलेरिया है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, लगा देता हूँ इंजेक्शन है।
मम्मद भाई मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। उसने डॉक्टर पिंटो की बात सुनी और खंजर से अपनी कलाई के बाल उड़ाते हुए कहा,
मैं कुछ नहीं जानता, इंजेक्शन देना है तो दे दो, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो पिंटो।
नहीं मोहम्मद भाई, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब।
मम्मद भाई ने खंजर अपने नेफे में उड़स लिया।
तो ठीक है,
तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ इंजेक्शन।
डॉक्टर पिंटो ने अपना बैग खोला और सिरिंज निकाली। मम्मद भाई जैसे घबरा गया। डॉक्टर पिंटो ने सिरिंज फौरन बैग में वापस रख दी और मिमियाते हुए मम्मद भाई से मुखातिब हुआ। क्यों 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 क्यों?
ओ बस मैं किसी के सुई लगते नहीं देख सकता।
ये कहकर मम्मद भाई खोली से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे उसके साथी भी चले गए। खैर डॉक्टर पिंटो ने मुझे कुनैन का इंजेक्शन लगाया बड़े सलीके से, बस उतना ही दर्द हुआ जितना की होता है। जब डॉक्टर पिंटो फारिग हुआ तो मैंने उससे फीस पूछी। उसने कहा,
ये 10 रुपये, 10 रुपीज, 10 रुपीज, ओनली 10 रुपये।
मैंने तकिए के नीचे से बटवा उठाया और 10 रुपये का एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। डॉक्टर पिंटो ने नोट थामा ही था कि मम्मद भाई खोली के अंदर आ गया।
ये क्या हो रहा है?
मैंने कहा, जी फीस दे रहा हूं। मम्मद भाई जरा घूम कर डॉक्टर पिंटो से मुखातिब हुआ।
साले ये फीस कैसी ले रहा है?
मैं कब ले रहा हूँ? ये दे रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ।
साले हमसे फीस लेते हो, वापिस करो नोट।
डॉक्टर पिंटो ने नोट मुझे वापस कर दिया और बैग उठाकर मम्मद भाई से माजिरत तलब करते हुए यानी आई एम सॉरी बोलते हुए खोली से बाहर निकल गया। मम्मद भाई ने एक उंगली से अपनी कांटो ऐसी मूछों को ताव दिया।
हमटो भाई, ये भी कोई बात है कि इस इलाके का डॉक्टर तुमसे फीस ले? तुम्हारी कसम मैं अपनी मूछें मुंडवा देता अगर उस साले ने फीस ली होती। हाँ सब तुम्हारे गुलाम है।
थोड़े से तवक्कुफ के बाद मैंने उससे पूछा, मम्मद भाई तुम मुझे कैसे जानते हो? उसकी मूछें थर थराई।
हम हाँ के बादशाह हैं बेरे, अपनी रियाय का ख्याल रखते हैं। हमारी अपनी सी आईडी है, वो हमें बताती रहती है कौन आया है, कौन गया है, कौन अच्छी हालत में है, कौन बुरी हालत में। तुम्हारे मुतालिक हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ।
मैंने अजराहे तफन्नुन पूछा, क्या जानते हो?
है तुम अमृतसर का रहने वाला है, कश्मीरी है, हाँ एक फटीचर अखबार में काम करता है। तुमने बिस्मिल्ला होटल के 10 रुपये देने, इसीलिए तुम उधर से नहीं गुजरते। अभी यह भिंडी बाजार में एक पान वाला तुम्हारी जान को रोता है, उससे तुम 20 रुपये दसाने के सिगरेट लेकर फूंक चुके हो। हैं?
मैं पानी पानी हो गया। उसने अपनी करख्त मूछों पर उंगली फेरी और मुस्कुरा कर कहा,
अमटो भाई तुम कुछ फिक्र ना करो, तुम्हारे सब कर्जे चुका दिए गए हैं, अब तुम नए सिरे से मामला शुरू कर सकते हो। मैंने उन सालों से कह दिया है, खबरदार जो वमटो भाई को तंग किया। और मोहम्मद भाई तुमसे कहता है कि इंशाल्लाह कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूं। मैं बीमार था, कुनैन का टीका मुझे लग चुका था जिसके बायस मेरे कानों में शाएं शाएं हो रही थी, और फिर मैं उसके खुलूस के नीचे बेहद दब चुका था। मैं सिर्फ इतना कह सका, मम्मद भाई खुदा तुम्हें जिंदा रखे, तुम हर दम खुश रहो। उसने मेरी आंखों में देखा, अपनी मूछों के बाल जरा ऊपर किए और कुछ कहे बगैर चला गया। उसके साथ ही भी चले गए।
डॉक्टर पिंटो हर रोज सुबह शाम आता रहा। मैंने उसे कई मर्तबा फीस का जिक्र किया भाई, मगर उसने हर मर्तबा कानों को हाथ लगा कर कहा,
नहीं मिस्टर मंटो, मोहम्मद भाई का मामला है, मैं एक डिलिया भी नहीं ले सकता। अरे फीस छोड़िए, इंजेक्शन लगवाइए इंजेक्शन।
अच्छा, मेरी बीमारी के दौरान में मम्मद भाई भी बिलनागा आता रहा। वो कभी सुबह आता था, कभी शाम को अपने शागिर्दों साथियों के साथ। वो मुझे हर मुमकिन तरीके से ढारस देता।
तुम डॉक्टर पिंटो के इलाज से इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक ठाक हो जाओगे ममटा भाई।
तो दोस्तों, 15 रोज के अंदर अंदर मैं ठीक ठाक हो गया। मलेरिया भी दूर हो गया और कमजोरी भी चली गई। इस दौरान में मम्मद भाई का हर हद्दोखाल मुझ पर अच्छी तरह वाजे हो चुका था। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूँ, वो छरहरे बदन का आदमी था। उम्र यही कोई 25-30 के दरमियान होगी। पतली पतली बाहें, टांगे भी पतली पतली थी, हाथ बला के फुर्तीले थे। सब कहते थे कि वो सैकड़ों कत्ल कर चुका है, मगर मैं ये अब भी मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन आज भी जब मैं उसके मुतालिक सोचता हूं तो मेरे तन बदन पर झुरझुरी सी तारी हो जाती है। खौफनाक हथियार। वो क्यों हर वक्त अपनी शलवार के नेफे में उड़ से रहता था। खैर, मैं जब बिल्कुल अच्छा हो गया और चलने फिरने के काबिल हो गया, तो एक दिन अरब गली के एक थर्ड क्लास चीनी रेस्तरा में मेरी उससे मुलाकात हो गई। वो उसी खंजर से अपने नाखून काट रहा था। मैंने कहा, मम्मद भाई आजकल बंदूक पिस्तौल का जमाना है और तुम ये खंजर लिए फिरते हो। उसने अपनी करख्त मूछों पर एक उंगली फेरी और कहा,
ममटो भाई बंदूक पिस्तौल में कोई मजा नहीं, इन्हें कोई बच्चा भी चला सकता है। घोड़ा दबाए अट्ठा, इसमें कोई मजा नहीं। ये चीज, ये खंजर, ये छुरी, ये चाकू, मजा आता है खुदा की कसम।
ममटो भाई ये वो है,
ओ तुम क्या कहा करते हो, हाँ आरट, इसमें आरट है मेरी जान। जिसको खंजर या छुरी चलाने का आरट ना आता, वो एक कंडम दादा है। अब पिस्तौल क्या है, बस खिलौना है जो नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, पर उसमें कोई लुत्फ नहीं, जरा लुत्फ नहीं। अभी तुम ये खंजर देखो ममटो भाई, इसकी तेज धार देखो, हैं हैं, इससे कोई धमाका नहीं होता। इसको बस यूं पेट के अंदर दाखिल कर दो, सफाई से, किस साले को मालूम तक ना। बंदूक पिस्तौल तो बकवास है।
अब हर रोज किसी न किसी वक्त उससे मुलाकात हो जाती थी, या यूं समझ लीजिए कि मैं जूं तू उससे मिल लेता था। मैं उसका ममनून एहसान मन था, लेकिन जब मैं कभी उसके एहसान का जिक्र करता, वो नाराज हो जाता और कहता,
मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया ममटो भाई, मैंने बस अपना फर्ज निभाया भाई।
जब मैंने कुछ तफ्तीश की तो मुझे मालूम हुआ कि वो फारस रोड के इलाके का एक किस्म का हाकिम था। ऐसा हाकिम जो हर शख्स की खबरगीरी करता है, कोई बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ हो, वो फौरन पहुंच जाता था। ये उसकी CID का काम था कि उसको हर बात से बाखबर रखे। वो दादा था, एक खतरनाक गुंडा। मेरी समझ में अब भी नहीं आता कि वो किस लिहाज से गुंडा था। खुदा वाही शायद है कि मैंने कभी उसमें कोई गुंडापन नहीं देखा। हाँ, एक सिर्फ उसकी मूछें थीं जो उसकी सूरत को हैबतनाक बनाए रखती थीं। उसको अपनी मूछों से प्यार था। वो उनकी परवरिश इस तरह करता था जिस तरह कोई अपने बच्चे की करता है। उसकी उसकी मूछों का एक एक बाल खड़ा था। मुझे किसी ने बताया था कि मम्मद भाई हर रोज अपनी मूछों को बालाई खिलाता है, और जब खाना खाता है तो सालन भरी उंगलियों से अपनी मूछें जरूर मरोड़ता है कि बुजुर्गों के कहने के मुताबिक यूं मूछ के बालों में ताकत आ जाती है। मैं कह चुका हूं कि उसकी मूछें बड़ी खौफनाक थीं। दरअसल उन मूछों का नाम मम्मद भाई था, या उस तेजधार खंजर का नाम मम्मद भाई था जो उसकी तंग घेरे की शलवार के नेफे में हर वक्त मौजूद होता था। मुझे उसकी उन दोनों चीजों से डर लगता था, ना मालूम क्यों। अच्छा, उस इलाके की तमाम रंडियां उसको अपना पीर मानती थीं। वो एक माना हुआ गुंडा था। लाजिम था कि उसका ताल्लुक किसी रंडी से होता, मगर मेरी इत्तिला के मुताबिक इस किस्म के सिलसिले से उसका कभी दूर का ताल्लुक भी नहीं रहा था। वो अनपढ़ था, मेरी और उसकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। जाने क्यों मेरी इतनी इज्जत करता था कि अरब गली के बेशतर आदमी मुझसे रश खाते थे। एक दिन
सुबह सवेरे दफ्तर जाते वक्त मैंने चीनी रेस्तरां में किसी से सुना कि मम्मत भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, इसलिए कि थाने वाले उसको जानते थे। मैं सोच में पड़ गया कि क्या वजह हो सकती है। मैंने उस आदमी से पूछा जो मम्मत भाई की गिरफ्तारी की बात कह रहा था।
क्या हुआ भाई? अरे भाईजान, इसी अरब गली में एक औरत रहती है, शीरी बाई। उसकी एक जवान लड़की है। अभी उस लड़की को कल एक आदमी ने खराब कर दिया, उसकी इस्मत दरी कर दी। तौबा तौबा तौबा। शीरी भाई रोते रोते मम्मत भाई के पास पहुंची। वो कहने लगी, तुम आके दादा हो है? मेरी बेटी से फला आदमी ने बुरा किया, तुम घर में बैठे हो, लाना थे तुम पे। मम्मत भाई ने ये मोटी गाली बुढ़िया को दी और पूछा, क्या चाहती हो? बुढ़िया बोली, मैं चाहती हूँ उस हरामजादे का पेट चाक कर दो। भाईजान, मम्मत भाई उस वक्त पाव की मां खा रहा था। उसने अपने नेफे में से खंजर निकाला, अंगूठा फेर के धार देखी और बुढ़िया से बोला, जा तेरा काम हो जाएगा। बुढ़िया का काम हो गया भाई। जिस आदमी ने बुढ़िया की लड़की की इस्मत दरी की थी, आधे घंटे के अंदर अंदर उसका काम तमाम हो गया।
मम्मत भाई को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, मगर उसने वो काम इतनी होशियारी और चाबुक दस्ती से किया था कि उसके खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं थी। ये अलग बात है कि अगर कोई ऐनी शाहिद मौजूद होता तो वो भी कभी कोई बयान ना देता। दो ही दिनों में मम्मत भाई को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वो दो दिन हवालात में रहा था और उसको वहां कोई तकलीफ ना हुई थी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही सब उसको जानते थे। लेकिन जब वो जमानत पर रिहा होकर बाहर आया तो वो उखड़ा हुआ था। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका पहुंचा था। मैंने महसूस किया कि उसकी मूछें, जो खौफनाक तौर पर हमेशा ऊपर को उठी होती थीं, किसी कदर झुकी हुई हैं, और उसके कपड़े जो हमेशा उजले होते थे, मैले थे। थाने से बाहर निकलने के बाद हम लोग चीनी रेस्तरां में चले गए। मैंने उससे कत्ल के मुतालिक कोई बात नहीं की। उसने खुद कहा,
वंटो साहब, अफसोस इस बात का, इसाला देर से मरा, मुश्किल से मरा। वो खंजर उतारने मुझसे गलती हो गई थी, मेरा हाथ जरा टेढ़ा पड़ा था। वो भी साला उसका कसूर था, साला एकदम मुड़ गया था। इसी वजह से तो सारा मामला कंडम हो गया था। बस साला मर गया, हर बड़ी तकलीफ के साथ। ये इस बात का मुझे बहुत अफसोस है।
आप खुद सोच सकते हैं कि मम्मत भाई की बात सुनकर मेरा रद्दे अमल क्या हुआ होगा। उसको अफसोस था कि वो उस आदमी को बतरीके अहसन कत्ल ना कर सका था, और ये कि उस आदमी को मरने में तकलीफ हुई थी। मुकदमा तो खैर चलना ही था। मम्मत भाई मुकदमे के डर से बहुत घबरा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में अदालत की शक्ल कभी नहीं देखी थी। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, वो अदालत, मैजिस्ट्रेट, वकील और गवाह किसी के मुतालिक कुछ नहीं जानता था, कि उन लोगों से उसका सबका कभी पड़ा ही नहीं था। तभी तो मैं कहता हूं कि मालूम नहीं उसने इससे पहले कत्ल किए भी थे या नहीं। वो बहुत फिक्रमंद था। पुलिस ने जब केस पेश किया और तारीख मुकर्रर हो गई तो वो बहुत परेशान हो गया। अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने कैसे हाजिर हुआ जाता है, इसके मुतालिक उसको कतन मालूम नहीं था। बार बार वो अपनी करख्त मूछों पर उंगली फेरता और मुझसे कहता,
ममटो भाई, मैं मर जाऊंगा पर कोर्ट में नहीं जाऊंगा। साली मालूम नहीं कैसी जगह है।
उसके शागिर्दों साथियों ने उसको ढारस दी कि मामला संगीन नहीं है भाई, कोई शहादत मौजूद नहीं है, बस एक सिर्फ उसकी मूछें हैं जो मैजिस्ट्रेट के दिल में उसके खिलाफ कोई मुखालिफ जज्बा पैदा कर सकती हैं। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूं, उसकी वो मूछें ही थीं जो उसको खौफनाक बनाती थीं। अगर उसकी वो मूछें ना होती तो वो हरगिज दादा दिखाई ना देता। मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान है। उसको अपनी मूछों के मुतालिक बड़ी फिक्र थी। वो सोचने लगा था कि अगर वो उन मूछों के साथ अदालत में पेश हुआ तो बहुत मुमकिन है उसको सजा हो जाए। अच्छा, आप लोग समझते होंगे ये कहानी है, मगर ये वाकया है कि मम्मत भाई बहुत परेशान था। उसके तमाम शागिर्द साथी हैरान थे, इसलिए कि वो कभी हैरानों परेशान नहीं हुआ था। उसके बाद करीबी दोस्तों ने भी उससे कहा,
मम्मत भाई कोर्ट में जाना है तो इन मूछों के साथ ना जाना, मैजिस्ट्रेट तुमको अंदर कर देगा।
वो हर वक्त सोचता रहता था कि उसकी मूछों ने उस आदमी को कत्ल किया है या उसने।
भाईजान, मूछों के साथ मत जाना, अंदर हो जाओगे।
भाईजान लिखवा लो, ये मूछें आपको ले डूबेंगी।
भाईजान मूछें मुंडवा लो, सिर्फ हो जाओगे।
भाईजान मूछें मुंडवा लो, हम आपके बगैर अनाथ हो जाएंगे। भाईजान
ये मूछें मैजिस्ट्रेट के दिल में जरूर कुछ ना कुछ पैदा कर देंगे, आप मुंडवा लो।
एक दिन उसने अपना तेज धार खंजर, जो मालूम नहीं पहली मर्तबा खून आशना हुआ था या इससे पहले भी हो चुका था, अपने नेफे में से निकाला और रेस्तरां के बाहर गली में फेंक दिया। मम्मत भाई ये क्या?
कुछ नहीं ममटो भाई, सब घोटाला हो गया है। कोर्ट में जाना है। सब कहते हैं मैजिस्ट्रेट मेरी मूछें देखकर मुझे जरूर सजा देगा। मैं बोलो मैं क्या करूं।
मैं क्या बोलता, मैंने उसकी मूछों की तरफ देखा जो वाकई बड़ी खौफनाक थी।
मोहम्मद भाई बात तो कुछ ठीक लगती है, तुम्हारी मूछें मैजिस्ट्रेट के फैसले पर असरअंदाज हो सकती हैं। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारी मूछों के खिलाफ होगा।
उसने अपनी चहेती मूछों पर बड़े प्यार से उंगली फेरी।
तो मुंडवा तो
अच्छा, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है?
मेरा ख्याल जो कुछ भी है वो तुम ना पूछो। हाँ सबका यह ख्याल है कि मैं ना मुंडवा दूं कि उस साला मैजिस्ट्रेट मुखालिफ ना हो जाए। तो मुंडवा दूं हम तो भाई है?
देखो अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मुंडवा दो। ये सच है मोहम्मद भाई कि इन मूछों के साथ तुम खतरनाक दिखाई देते हो। दूसरे दिन मोहम्मद भाई ने अपनी मूछें, अपनी जान से अजीज मूछें मुंडवा डाली। मिस्टर एफएच टेल की अदालत में उसका मुकदमा पेश हुआ। मूछों के बगैर मोहम्मद भाई हाजिर हुआ, मैं भी मौजूद था। मोहम्मद भाई के खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं थी, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उसकी फाइल देखने के बाद उसको खतरनाक हुंडा करार देते हुए सूबा बदर यानी तड़ी पार कर दिया। उसको सिर्फ एक दिन दिया गया कि वो अपने मामलात तय करने के बाद बंबई छोड़ दे। अदालत से बाहर निकलने के बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं की। उसकी छोटी बड़ी उंगलियां बार बार उसके बालाई होठ की तरफ बढ़ती थी, मगर वहां कहां कोई बाल था। अगली शाम जब उसे बंबई छोड़कर कहीं और जाना था, मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात चीनी रेस्तरां में हुई। उसके शागिर्द साथी उसके आसपास कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। मूछों के बगैर मोहम्मद भाई बहुत शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बहुत मगमूम है।
क्या बात है मोहम्मद भाई?
उसने एक बहुत बड़ी गाली खुदा मालूम जाने किसको दी और कहा,
साला मोहम्मद भाई नहीं रहा।
मैंने कहा, कोई बात नहीं मोहम्मद भाई, यहां नहीं तो किसी और जगह से ही। जो जगहें उसकी जुबान पर आईं उसने उनको बेशुमार गालियां दी।
साला अपन को ये गम नहीं, हाँ रहूं या किसी और जगह रहूं, ये साला मूछें क्यों मुंडवा दी?
फिर उसने उन लोगों को जिन्होंने उसको मूछें मुंडवाने का मशवरा दिया था 1 करोड़ गालियां दी और कहा,
साला अगर मुझे तड़ी पारी होना था तो मूछों के साथ क्यों ना हुआ।
मुझे हंसी आ गई।
साला तुम कैसा आदमी हो ममटो भाई, खुदा की कसम हम सच कहते हैं, हमें फांसी लगा देते हैं, पर ये बेवकूफी तो हमने खुद की। साला आज तक हम किसी से ना डरा था, साला हम अपनी ही मूछों से डर गया।
ये कहकर उसने दोहत्थड़ अपने मुंह पर मारा।
मोहम्मद भाई लानत है तुझ पर, साला अपनी ही मूछों से डर गया। अब चाहे अपनी मां की।
मम्मत भाई की आंखों में आंसू आ गए, जो उसके बिना मूछों के चेहरे पर कुछ अजीब से दिखाई दे रहे थे।
अभी आपने सुना सादत हसन मंटो साहब का अफसाना मम्मत भाई, राकेश चतुर्वेदी ओम की आवाज में। ये IVM पॉडकास्ट्स और जश्न कलम की प्रस्तुति थी। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए IVM पॉडकास्ट्स और जश्न कलम .com पर।